जय गोपी जन है वल्लभ जय गिरिवर जे गोपी जन है वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर्ष श्री श्री मधिर्दिवाइन इंग्रेश अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौणदाय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज़ टू 70 कोटि जो Lord glory to Simran devotees, all glory to Simran devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 20 श्लोक संख्या 12। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मना दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो निम्न विक्रियन्ते मयि बद्ध सहृदा। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सहृदा। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सहृदा। वैष्णो देवी शब्दार्थ बोलिए। भिन्नस्य भिन्न लिंगस्य शरीर का गुण तीनों गुणों का प्रवाह निरंतर परिवर्तन द्रव्य भौतिक तत्व क्रिया कर्म कारक
देवता, चेतना तथा मन आत्मनः से युक्त दृष्टासु अनुभव होने पर संपत्सु सुख विपत्सु दुख सूर्य ज्ञानी लोग ना कभी नहीं विक्रियन्ते विचलित होते हैं मयि मुझमें बद्ध सौहृदा मित्रता में बंध कर। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। भगवान विष्णु ने राजा प्रभु से कहा, हे राजन, तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से ही यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। यह शरीर पांच तत्वों इंद्रियों के नियामक देवताओं तथा आत्मा द्वारा विक्षुब्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना है। चूंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है, अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है, वह भली भांति जानते हुए कभी भी भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। तात्पर्य बनने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक के शब्द क्या है? भिन्नस्य लिंगस्य, लिंग का मतलब शरीर, ये भिन्न है। ये जो भौतिक शरीर है ये अपने से भिन्न है। सबसे पहले शब्द है भिन्नस्य, भिन्नस्य शरीर का, तो भिन्नस्य में भी भिन्न का ये संस्कृत भाषा की ये विशेषता है कि जितने भी शब्द होते हैं वो उसी रूप में चलते हैं। मतलब हमसे भिन्न है, ये शरीर जो है हमसे भिन्न है, तो शरीर से जो भिन्न है लिंग यानी शरीर, क्षमा करना, आत्मा से जो भिन्न है शरीर, उसका गुण प्रवाह, उसका जो है क्या है, गुण प्रवाह, उसका गुणों का प्रवाह है। द्रव्य क्रिया कारक चेतन आत्मनः, ये भिन्नस्य लिंगस्य के साथ में ये भी है शब्द द्रव्य क्रिया कारक चेतन आत्मनः, ये एक ही शब्द है, कई शब्दों से मिलकर के एक बड़ा शब्द बन गया है। द्रव्य क्रिया कारक चेतनात्मना शरीर की विशेषता है। आत्मना का मतलब बना हुआ, किससे बना है? द्रव्य क्रिया कारक और चेतना, इनसे बना हुआ है। द्रव्य का मतलब पांच भौतिक तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और क्रिया का मतलब पांच कर्मेंद्रियां, और कारक का मतलब उनके देवता, और चेतना यानी मन, तीन से बना हुआ है भौतिक शरीर जो क्या है, भिन्न है, आत्मा से भिन्न है। दृष्टासु, दृष्टासु का मतलब देख करके, देखने के कारण, दृष्टासु देखने के कारण, क्या देखने के कारण, ये शरीर जो है इन चीजों से बना हुआ है, और भिन्न है आत्मा से। दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूर्यो, तो देखने के कारण संपत्ति में और विपत्ति में सूर्यो, सूर्यो माने ज्ञानी लोग, ज्ञानी जो ज्ञानी हैं वो देखते हैं। न विक्रियन्ते, विकार को नहीं प्राप्त होते हैं संपत्ति में और विपत्ति में, विकार को नहीं प्राप्त होते हैं।
विकार क्या है? हर्ष और शोक। संपत्ति में हर्ष का विकार होता है और विपत्ति में शोक का विकार होता है। तो हर्ष शोक के विकार को नहीं प्राप्त होते। न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा, उनका जो सौहार्द है वो मुझसे बंधा हुआ है, सौहार्द के द्वारा वे मुझसे बंधे हैं या उन्होंने मुझे बांधा है, अपने सौहार्द से उन्होंने मुझे बांधा है। अगर उन्होंने मुझे बांधा है तो भी वो मुझसे ही बंधे हैं। न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा, तो भगवान पृथु महाराज से ऐसा कह रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की। प्रश्न उठता है कि यदि जीवात्मा को शारीरिक संयोग के कार्यकलापों का अधीक्षण करना है तो वो शरीर के कार्यों से किस प्रकार उदासीन रह सकता है। ये प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है कि शारीरिक संयोग के कार्यकलापों का अधीक्षण तो करना ही पड़ता है कि शरीर का जो है, क्या कार्य हो रहा है, उन कार्यों में जो है आत्मा को लिप्त होना पड़ता है। व्यवहार में ये सब जो है कार्य करने होते हैं, अपना शरीर है, अपना घर है, अपना परिवार है, तो इन सब चीज़ों में क्या करना पड़ता है, अधीक्षण करना होता है ना। तो प्रश्न क्या होता है कि वो शरीर के कार्यों से किस प्रकार उदासीन रह सकता है, कैसे उदासीन रहेगा, यानी भिन्न कैसे देखेगा। जब शरीर के कार्यों में वो जो है लगा हुआ है, आत्मा जो है, जीव आत्मा जो है शरीर के कार्यों में लगा हुआ है, प्रश्न यही है, तो किस प्रकार उदासीन, यानी वो भिन्न फिर कैसे देखेगा। अगर भिन्न देखेगा तो फिर उनके कार्यों में बिल्कुल वो रुचि नहीं लेगा, है? लेकिन जो भक्त होते हैं अच्छी प्रकार से सब कार्य करते हैं, काये न मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रिय रपि योगिनः कर्म कुर्वन्ती, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से योगिनः कर्म कुर्वन्ती। तो योगी जो यानी भक्त लोग कर्म करते हैं तो फिर अपने से अलग कैसे देखे, ये प्रश्न उठता है। प्रभुपाद प्रश्न उठा रहे हैं, तो ध्यान देना होगा, विचार करना होगा, ये प्रश्न है। तो शरीर के कार्यों से उदासीन कैसे रह सकता है, अपने को भिन्न कैसे समझे। अगर आप अपने को भिन्न समझते हैं तो फिर हमें कुछ मतलब नहीं होता है, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे आपसे कोई मतलब ही नहीं। अगर मैं आपको भिन्न समझता हूँ, किसी भी चीज़ को अपने से भिन्न समझते हैं तो फिर मुझे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो प्रभुपाद प्रश्न उठा रहे हैं, तो प्रभुपाद फिर इसका उत्तर दे रहे हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, बहुत रोचक उत्तर दिया प्रभुपाद ने, और बड़ा सरल, बहुत सरल और बड़ा रोचक उत्तर दिया है। इसका उत्तर इस प्रकार है, ये कार्यकलाप आत्मा के कार्यों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर एक मोटा सा उदाहरण दिया जा सकता है, मोटा सा उदाहरण। एक व्यापारी अपने मोटर कार में बैठकर उसकी चाल का निरीक्षण करता रहता है और चालक को सलाह भी देता रहता है। चालक मतलब
ड्राइवर,
चालक मतलब ड्राइवर। हरि बोल, हरि बोल। विश्राम नहीं किया ना, पर्याप्त विश्राम नहीं किया, इसलिए नींद आ रही क्लास में। चालक का मतलब ड्राइवर। तो व्यापारी अपने ड्राइवर को सलाह भी देता रहता है, किसके बारे में, गाड़ी के बारे में सलाह भी देता रहता है, सलाह लेता भी है, ड्राइवर से सलाह भी लेता है, कि गाड़ी की मरम्मत करानी है, इसमें तेल चेंज करना है, इसमें पेट्रोल भराना है, इसमें ये सब चेक कराना है, सर्विस कराना है। तो व्यापारी अपने चालक को सलाह भी देता रहता है और जानता रहता है, वो जानता रहता है
कि कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है और वो अपनी कार के बारे में सब कुछ जानता है, किंतु तो भी वो अपनी कार से भिन्न रहता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है और समझने के लिए मतलब पूरा जो है उदाहरण है। वो अपनी कार से भिन्न रहता है और अपने व्यापार के विषय में अधिक चिंतित रहता है। गाड़ी की भी चिंता करता है, अपने व्यापार की ज्यादा चिंता करता है। तो ये नहीं है कि गाड़ी की चिंता ना करें, लेकिन गाड़ी की उतनी चिंता करता है जितना उसके व्यापार में सहायक है। जिससे उसका व्यापार अच्छा चले तो गाड़ी की इसलिए चिंता करता है, लेकिन मुख्य चिंता उसकी किसमें है? व्यापार में। और गाड़ी की चिंता वो करता क्यों? अपने व्यापार के लिए, क्योंकि गाड़ी का जो प्रयोग है वो अपने व्यापार में कर रहा है। व्यापार में मुझे कितना लाभ होगा, तो गाड़ी का प्रयोग जो है अपने व्यापार में कर रहा है। तो ये जो है क्या है, हमारे ऊपर लागू होता है कि जो शरीर है ये गाड़ी है, तो इसको भी पेट्रोल देना है, तेल देना है, सर्विस करना है शरीर की, आप करते हैं। खाना पीना सोना ये सब आवश्यक है गाड़ी को जो है सही स्थिति में रखने के लिए, ये सब चीज़ जरूरी हैं ताकि अपना व्यापार अच्छा चले। और व्यापार क्या है? भक्ति, कृष्ण की भक्ति, ये अपना क्या है? व्यापार। और आप लोग क्या है? व्यापारी, आप लोग व्यापारी हैं। और व्यापार क्या है आपका? भक्ति। तो भक्ति इसी प्रकार से चले और उसमें लाभ हो, तो शरीर की जो है आप देखभाल करते हैं, आपको करना है देखभाल, उतनी देखभाल करना है जितना जिससे आपका व्यापार अच्छा चले। क्या व्यापार? भक्ति, कि ठीक से मंगल आरती में उठ सकें, अभी क्लास में नींद आ रही है, क्यों? क्योंकि ठीक से आपने इसको विश्राम नहीं किया अपनी गाड़ी को जो है, तो गाड़ी जो है अब खराब हो रही है, क्लास के समय गाड़ी खराब हो रही है, नींद आ रही है, गाड़ी को विश्राम की जरूरत है, नहीं विश्राम दिया तो क्लास में जो है वो क्या हो रही है? फेल हो रही है, गाड़ी खराब हो गई, ठीक से ध्यान नहीं दिया, हाँ तो पहिया पंचर हो गया। तो पहले से पंचर कराया नहीं, ठीक से चेक नहीं कराया, पंचर हो गया। तो अधिक चिंतित रहता है अपने व्यापार के विषय में, कार में चलते हुए भी वो अपने व्यापार तथा कार्यालय के विषय में सोचता रहता है। कार के बारे में सोचता है, लेकिन ज्यादा सोचता है किसके बारे में? व्यापार के बारे में और अपने ऑफिस के बारे में। अपना व्यापार, अपना ऑफिस। ऑफिस क्या है? मंदिर, राधा पार्थार्थी मंदिर अपना ऑफिस है। तो अपना ऑफिस है और व्यापार है, उसके बारे में चिंतित रहता है, सोचता रहता है। भले ही वो कार में बैठा रहता है, भले ही वो कार में बैठा रहता है, शरीर में, आप शरीर में हैं, कार में बैठा रहता है, किंतु उसके कार से कोई संबंध नहीं होता, कार से कोई संबंध नहीं होता। कार एक दिन जो है जाएगी, छोड़ना होगा, कार बदलनी होगी, तो शरीर भी बदलना होगा, लेकिन अपना व्यापार नहीं बदलना। शरीर बदले तो बदल जाए, अपना व्यापार नहीं बदलना, जो व्यापारी है। तो भक्ति का व्यापार जो है वो नहीं उसका बदलता है, शरीर बदलता है तो भक्ति का व्यापार नहीं बदलता, किंतु उसका कार से कोई संबंध नहीं रहता। कार धीरे धीरे खराब होती है ना, खटारा, गाड़ी खटारा होती है तो भी चलाता है, जब तक चले तब तक चलाता है, तो शरीर खराब हो रहा है तो भी चलाता है जब तक चले, और जब बिल्कुल बेकार हो गया तो छोड़ देता है उसको, तो नई कार लेता है। आगे, जिस प्रकार व्यापारी सदैव अपने व्यापार के विचारों में मग्न रहता है, जिस उसी प्रकार जीवात्मा भी भगवान की सेवा करने के विचारों में मग्न रह सकता है। अपना व्यापार क्या है? कृष्ण की सेवा करना, तो उसमें वो मग्न रहता है। तभी वो भौतिक शरीर के कार्यकलापों से अपने को पृथक रख सकता है। तो ये जरूरी है कि अगर अपने व्यापार में आप मग्न रहते हैं और व्यापार को ज्यादा महत्व देते हैं तो फिर कार को आप ज्यादा महत्व नहीं देंगे। लेकिन जरूरी है कि अपने व्यापार को महत्व दें। लेकिन अपने व्यापार को भूल गए और कार में ही हमेशा लगे रहते हैं कि कार में पेंट कराना है, अभी और पेंट कराओ, अभी और ये करो वो करो, और पूरा समय अपना व्यापार को भूल गए। तो अगर व्यापार को भूल जाता है तो फिर कार में ही उसको कहते हैं अहंकार। अहंकार, अहंकार क्या है? अहंकार, मैं कार हूं, इसको कहते हैं अहंकार। तो मैं कार हूं नहीं, अहम व्यापार, अहम व्यापार। अहंकार नहीं हूं, अहंकार नहीं, अहम व्यापार, व्यापार। तो राधा पार्षद सेवा, ये जो है मेरा असली कार्य है, मेरा स्वरूप है। तो यहां प्रभुपाद क्या जोर दे रहे हैं, किस बात पर जोर दे रहे हैं? अपने व्यापार को अगर आप ज्यादा महत्व देंगे तभी आप कार को कम महत्व देंगे, और नहीं तो कार को ही पूरा महत्व देंगे। आपका पूरा जो जो एकाग्रता है वो कार में रहेगी और क्या नहीं रहेगी। अगर एकाग्रता आपकी अपने व्यापार में नहीं है तो कार में ही एकाग्रता रहेगी और क्या, कि नहीं? तो मैं बद्ध सौहृदा, इस श्लोक में क्या है, मैं बद्ध सौहृदा, तो जिनका सौहार्द जो है मुझमें बंधा हुआ है, जो अपने सौहार्द से मुझसे बंधे हुए हैं, तो फिर वो कार से नहीं बंधे है? तो अगर आप जो है कृष्ण के साथ सौहार्द में नहीं बंधे हैं तो फिर आप कार में बंधे हुए हैं अहंकार के कारण। भगवान लिखते हैं तभी वो भौतिक शरीर के कार्यकलापों से अपने को पृथक रख सकता है। ऐसी निर्लिप्त अवस्था भक्त के लिए ही संभव है। निर्लिप्त, जो व्यक्ति अपने व्यापार को समझता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, व्यापार है, तो फिर कार को जो है वो ज्यादा महत्व नहीं देगा। महत्व देता है उतने समय के लिए जितना, जितने समय के लिए ये कार उपयोगी अपने व्यापार में, उतना ही महत्व देता है जितना व्यापार में लाभ होता है कार के द्वारा। और बेकार हो गई तो शोक थोड़ी करता है, छोड़ इसको, हटाओ कार, नई कार लो, दूसरी कार लो। तो कार के लिए थोड़ी वो शोक करता है, कार तो दूसरी मिल जाएगी। व्यापार अच्छा चलना चाहिए, कार तो दूसरी मिल जाएगी। ऐसी निर्लिप्त अवस्था भक्त के लिए ही संभव है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं यहां पर बद्ध सौहृदा शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है। बद्ध सौहृदा, कर्मी ज्ञानी तथा योगी जनों को भक्ति में नहीं बांधा जा सकता। कर्मी ज्ञानी योगी और भक्त, ये क्रम से ऊपर किस तरह है? सबसे नीचे स्तर क्या है? कर्मी का, कर्मी से नीचे भी कर्मी है लेकिन वो तो नरक में जा रहे हैं, जो कर्म में लगे हुए हैं वो तो नरक में जा रहे हैं, इसलिए उनको तो छोड़ दिया। आजकल तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है विकर्मी हैं। कर्मी जो शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, जो शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। तो कम से कम अगला जीवन मानते हैं, अपना अगला जीवन है, अगले जीवन के लिए कुछ कर रहे हैं कर्मी, तो मनुष्य के जीवन का कुछ लाभ उठा रहे हैं। हालांकि वो स्वर्ग में क्या है, वो भोग करके फिर दोबारा आएंगे इस पृथ्वी में, फिर वही स्थिति है कि कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, विकर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो वो तो आना जाना, आने जाने का चक्कर है, लेकिन फिर भी कर्मी विकर्मी से तो अच्छे हैं। और उससे अच्छे कर्मी से अच्छे कौन है, ज्ञानी, जो क्या पाना चाहते हैं, मुक्ति, मुक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं कि आने जाने का चक्कर छोड़ो कि स्वर्ग में जाएंगे आएंगे, हैं, मुक्ति मिल जाए, तो वो जो है मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन कैसी मुक्ति पाना चाहते हैं, भगवान की सेवा से रहित मुक्ति, तो मुक्ति होती नहीं। फिर भी वो सोचते हैं कि मुक्ति हम मिल सकती है भगवान की सेवा से, मुक्त होकर के भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तो ज्ञान जो है उनका अधूरा है, त्रुटिपूर्ण ज्ञान है, उनको ज्ञान ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी कर्मी से अच्छा है ज्ञानी, और ज्ञानी से अच्छा कौन है, योगी। ज्ञानी जो है निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहता है, अपना व्यक्तित्व नष्ट करना चाहता है, लेकिन योगी सिद्धियां पाना चाहता है, अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहता है, सिद्धियां पाना चाहता है, और सिद्धियों के द्वारा दूसरों को जो है विस्मित करना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है योगी। तो कम से कम ज्ञानी से अच्छा है योगी। लेकिन ये सब जो है क्या है, अशांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। भुक्ति कामी कर्मी, मुक्ति कामी कौन, ज्ञानी, सिद्धि कामी योगी, सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, तो कृष्ण का भक्त निष्काम अतएव शांत। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्मी ज्ञानी तथा योगी जनों को भक्ति में नहीं बांधा जा सकता, वे भगवान से नहीं बंधे होते हैं या बंधना नहीं चाहते हैं, भगवान से नहीं बंधना चाहते हैं। कर्मी जो है भुक्ति कामी होता है, भोगों को चाहता है, भगवान से नहीं बंधना चाहता, और ज्ञानी मुक्ति पाना चाहता है, भगवान से नहीं बंधना चाहता, और योगी सिद्धि पाना चाहता है, भगवान से नहीं बंधना चाहता। तो प्रभु लिखते हैं कि कर्मी ज्ञानी तथा योगी जनों को भक्ति में नहीं बांधा जा सकता। कर्मीजन शरीर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य शरीर को ही सुविधा पहुंचाना होता है। ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन द्वारा बंधन से छूटना चाहते हैं, किंतु उन्हें मुक्त पद प्राप्त नहीं होता, मुक्त पद या मुक्ति पद प्राप्त नहीं होता। भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण ना कर पाने से वे ब्रह्म साक्षात्कार के उच्च पद से नीचे गिर जाते हैं। ये श्लोक है भागवतम का, कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है भागवतम का, कि उन्हें मुक्त पद प्राप्त नहीं होता, भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण ना कर पाने से वे ब्रह्म साक्षात्कार के उच्च पद से नीचे गिर जाते हैं। श्लोक है ऐसा, ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस तो यस्त भावात अविशुद्ध बुद्धिया आरोही कृत्रेण परम पदम तथा पतंत दो अनादृत युष्मदंग्रिया। अपने को मुक्त तो समझते हैं है? लेकिन तो ये अस्त भावात, ये उनका जो भाव है वो अस्त हो चुका है। अस्त का मतलब ये सूर्य का अस्त हो गया। अगर वो भक्ति भी करते हैं तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, और जैसे उनको मुक्ति दिखाई पड़ती है तो उनका भाव अस्त हो जाता है। भक्ति ही है, भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं, तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई उनकी, भक्ति उनकी शुरू ही नहीं हुई। अगर वो मुक्ति पाने के लिए भक्ति करते हैं तो भक्ति उनकी शुरू ही नहीं हुई। और वो अपने को मुक्त मान लेते हैं और भक्ति का भाव अस्त हो जाता है उनका, मुक्ति उनको मिलती नहीं है। हाँ, अपने को विमुक्त माने ना, अपने को विमुक्त मान लिया उन्होंने, विमुक्त मानी, अपने को विमुक्त मान लिया तो यस्त भावात, और भाव उनका अस्त हो गया, अब वो भक्ति की जरूरत नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि भक्ति जो है सीढ़ी है मुक्ति पहुंचने, मुक्ति तक पहुंचने के लिए भक्ति सीढ़ी है। तो जब आप छत पर पहुंच जाते तो सीढ़ी को छोड़ देते हैं, तो भक्ति की सीढ़ी को छोड़ देते हैं मुक्ति तक पहुंचने में। तो यस्त भावात, उनका भाव अस्त हो जाता है, भक्ति का भाव अस्त हो जाता है। अविशुद्ध बुद्धिया, बुद्धि शुद्ध नहीं है। आरोह्य कृष्ण पदम पदम परम पदम तथा, आरोह्य कृष्ण परम पदम तथा, बड़े कष्ट से वो परम पद तक पहुंच भी जाएं, पतन दधो तो गिर जाते हैं नीचे। अनादृत जिसमें दंग्रिया, क्योंकि आपके चरण कमलों का आदर नहीं किया तो मुक्ति के पद से भी गिर जाते हैं। तो यहाँ पर उपाय लिखते हैं, ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन द्वारा बंधन से छूटना चाहते हैं किंतु उन्हें मुक्ति पद प्राप्त नहीं होता, भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण ना कर पाने से वे ब्रह्म साक्षात्कार के उच्च पद से नीचे गिर जाते हैं। आगे, योगियों में भी देहात्म बुद्धि होती है, सिद्धियां पाना चाहते हैं तो सिद्धियां भी भौतिक हैं। योग में भी देहाधिपति होती है, वे मानते हैं कि धारणा आसन प्राणायाम इत्यादि इसके द्वारा वे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु भक्ति की स्थिति सदैव दिव्य होती है। भक्ति की स्थिति सदैव दिव्य होती है क्योंकि भगवान से उसका संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। मई बद्ध सौहृदा, मुझमें जिनका सौहार्द बन गया है, बन गया। तो ये क्या है, संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। तो अतः केवल भक्त ही शरीर के कर्मों तथा फलों से पृथक रहकर अपने वास्तविक कर्म अर्थात भगवान की सेवा में संलग्न रह सकते हैं। बहुत अच्छा प्रभुपाद ने समझाया, यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं केवल भक्ति ही शरीर के कर्मों और फलों से पृथक रहकर अपने वास्तविक कर्म यानी भगवान की सेवा में संलग्न रह सकते हैं। भक्ति हो सकता है ऐसा कि शरीर में और कर्मों में लगा हुआ भी वो अलग रहता है शरीर से और भगवान की सेवा में लगा रहता है। और व्यापारी का उदाहरण बहुत अच्छा बताया प्रभुपाद ने। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। पौने नौ बजिए दवाई देना। देखिए आज के श्लोक में भगवान ने मई बद्ध सौहृदा ये शब्द प्रयोग किया है, लेकिन एक श्लोक है जिसमें इसी प्रकार के शब्द हैं, त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वयि बद्ध सौहृदा। देवता लोग स्तुति करते हैं भगवान की, तो वो भगवान यहाँ कह रहे मई बद्ध सौहृदा, मुझमें जिनका सौहार्द बंधा हुआ है, है ना। जब देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं तो उसी प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, ले मई की जगह त्वयि, त्वयि बद्ध सौहृदा। तथा नते माधव ताब का कुचित, इसके पहले वही है, ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानेनस। तो ये श्लोक अभी हमने जो चर्चा की है तो ये देवताओं का श्लोक है। पतन तधो अनादृत जिसमें दंग्रिया, कि वो नीचे गिर जाते हैं आपके चरण कमलों का आदर ना करने के कारण नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिर देवता लोग कहते हैं दूसरी बात तथा नते माधव ताव का कुछ, उसी प्रकार से उस प्रकार से गिरदे नहीं है वे जो ताव का हैं, जो आपके हैं, हे माधव वे उस प्रकार से नहीं गिरते हैं कभी भी। भ्रष्टंति मार्गात, मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते, मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते जो ज्ञानी होते हैं, मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। अनादित युष्मदंग आपके चरण कमलों का आदर ना करने के कारण मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, पतंग अधो अधा पतित हो जाते हैं। लेकिन ताव का हे माधव, आपके जो भक्त हैं कभी भी मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते। तो ही बद्ध सौहृदा, तो ही बद्ध सौहृदा, क्योंकि आप में उनका सौहार्द बंधा हुआ है, आपके साथ वो बंधे हैं सौहार्द के साथ, सौहार्द के कारण बंधे हुए हैं सौहृदा। भगवान तो सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के सुहृद हैं, और वे भगवान के सुहृद हो जाते हैं। भगवान अपने को कहते हैं कि मैं सब प्राणियों का सुहृद हूँ, और वे भगवान के सुहृद हो जाते हैं, और भगवान को बांध लेते हैं अपने सौहार्द से, भगवान बन जाते हैं उनके सौहार्द से। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी रस्सी लाता है भगवान के पास बांधने के लिए, अपने सौहार्द की रस्सी, तो भगवान भागते नहीं हैं बल्कि कहते हैं हाँ हाँ बांधो 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 मुझे, बहुत अच्छा है, बंधन है। भगवान बांधते नहीं, भगवान भागते नहीं हैं। भगवान सोचते हैं कि कम से कम कोई व्यक्ति आया तो मुझे बांधने के लिए। भ्रष्टंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वया अभिगुप्ता, और आपके द्वारा वे रक्षित हैं, अभिगुप्ता आपके द्वारा संरक्षित हैं। विचरन्ति निर्भया, तो निर्भय होकर के विचरण करते हैं। विनायकानि कपि मूर्धसु प्रभो, देखनो कि जो सेना है उनके भी सेनापतियों के सिर पर वे जो है विचरण करते हैं। विनायकानि कपि इस तरह से निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंद्वियों के मस्तकों को झुका देते हैं, और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। तात्पर्य लिखते हैं सामान्यतया भक्तों का पतन नहीं होता, किंतु यदि परिस्थिति वर्ष ऐसा हो भी जाए तो भगवान उनकी प्रबल अनुरक्ति के कारण सभी परिस्थितियों में उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। भक्तगण गिरकर भी इतने प्रबल रहते हैं कि अपने शत्रुओं के मस्तक पर चल सकें। सीधे रास्ते में नहीं चलते हैं, शत्रुओं के सिर के ऊपर चलते हैं। तो प्रभुपाद का जो तात्पर्य बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर जो है चर्चा यही है कि त्वयि बद्ध सौहृदा, मयि बद्ध सौहृदा भगवान कह रहे हैं, और इसमें बताया गया है त्वयि बद्ध सौहृदा, आपके जो है चरणों को भी अपने अपने सौहार्द से बांध लेते हैं। सौहार्द है ना, जो निर्विशेषवादी है तो वो तो सोच भी नहीं सकता है भगवान के साथ सौहार्द कैसे हो सकता है। आप जो है भगवान के सुहृद कैसे हो सकते हैं, भगवान के हितैषी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, निर्विशेष हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन भगवान व्यक्ति हैं, और सौहार्द से जो है वो बंधने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनको बड़ी खुशी होती है कोई उनको बांधता है, सौहार्द से बांधता है, है ना। तो आज के श्लोक में जो बताया गया है गुण प्रवाहो, भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो, गुणों का जो प्रवाह है न विक्रियन्ते, गुणों के प्रवाह में नहीं बहते। ये भौतिक जगत में क्या है, गुणों का प्रवाह है, प्रवाह है बहाव, गुणों का प्रभाव, सतोगुण का जो बहाव है वो ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्त्वस्था, सतोगुण की प्रवाह में आप पड़ जाते हैं तो ऊपर की हो जाते हैं। बद्धे तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण के बहाव में प्रवाह में आप फंस जाते हैं तो मध्य में रहते हैं। और मध्य में कितनी गतियां हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कितनी दिशाएं हैं, हजारों दिशाएं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा और अधोगच्छन्ति तामसा, तमोगुण में अगर तमोगुण के बहाव में आ जाते हैं तो नीचे जाते हैं। तो तीनों गुणों के प्रवाह में जितने भी जीव हैं वो क्या है, बंधे हुए हैं। लेकिन अब भगवान के चरण कमलों से अगर आप बंध गए तो फिर आप इस प्रवाह में नहीं बंधेंगे। जैसे कोई मजबूत खंभा से आप बंध जाए तो कोई भी प्रवाह आएगा वो नहीं बहेगा कि नहीं। इस भव समुद्र में, ये समुद्र है, हम लोग समुद्र में है, लगता है कि हम जमीन में बैठे हैं, ये जमीन है, कहाँ समुद्र है, समुद्र है ये। समुद्र में कोई भी चीज पड़ी हो तो हमेशा स्थान बदलती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी आगे पीछे दाएं बाएं, कई प्रकार की गतियां होती हैं। और हम लोग इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार की गतियां प्राप्त करते हैं, कोई स्थिर स्थान नहीं है। क्यों, समुद्र, तो आप समुद्र में हैं, जमीन में, समुद्र में लग रहा है कि आप जमीन में हैं, समुद्र में हैं। सत्वगुण का बहाव आता है तो स्वर्ग पहुंच गए, और फिर लहर जैसे आती है, समुद्र की लहर ऊपर ऊपर ले जाती है तो स्वर्ग पहुंचा देती है, फिर लहर नीचे आएगी आप नीचे आएंगे, फिर नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे नीचे नीचे हाँ तो नरक में भी जाएंगे, हाँ फिर नरक से भी ऊपर आएंगे, फिर इधर इधर उधर। समुद्र कितना बड़ा समुद्र है, कहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, बहुत समुद्र है। लेकिन अगर बन गए आप, त्वयि बद्ध सौहृदा मयि बद्ध सौहृदा, कृष्ण के चरण कमलों से बन गए, तो आपको क्या मिल गया, खूंटा मिल गया। बन गए हा? मजबूत रस्सी से बन गए, सौहार्द की मजबूत रस्सी से बन गए, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, कहीं नहीं जाएंगे। तो आप जो है उसी स्थान में रहेंगे, बहुत सुरक्षित है। तो ये भी कहा जाता है कि भगवान के चरण कमल जो है कि नौका में कोई बैठता है तो भव सागर क्या बन जाता है, गाय के खोर से बने गड्ढे के समान बन जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो समुद्र फिर इतना छोटा हो जाता है, गाय के खोर से बने गड्ढे के समान हो जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। और अगर वो समुद्र अगर है भी, बहुत बड़ा समुद्र है, अगर वो छोटा नहीं हुआ तो आप बंधे हुए हैं, तो इस इतने बड़े समुद्र में आप बंधे हुए हैं तो भी आप जो है कहाँ हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं आप। तो मई बद्ध सौहृदा, तो भगवान कह रहे हैं मुझ में जिनका सौहार्द बंध गया, बांध ले। और भगवान बंधने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में भी जो है भगवान जो है सौहार्द से बंध जाते हैं, और वे आपके सौहार्द का उत्तर भी देते हैं। अर्चा विग्रह के रूप में भी भगवान बंधने के ही लिए अर्चा विग्रह का रूप धारण करते हैं, बंधने के लिए। अब हम ना बांधें उनको तो अलग बात है, वो तो बंधना चाहते हैं, इसलिए अर्चा विग्रह के रूप में भी प्रकट होते हैं ना। तो ये जो है इस श्लोक में भगवान पृथु महाराज से कह रहे हैं, और पृथु महाराज तो पहले से ही भगवान को बांधे हुए हैं अपने सौहार्द से, लेकिन ये तो उनके बहाने शिक्षा देने हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों ने शिक्षा देने हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं, विषय बहुत रोचक है। हाँ जी, अच्छा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चालू है चालू है।
नानी जी दे रहे हैं जो श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य खाड़ी के बारे में बताया, जो बिजनेस मैन है वो आसान नहीं होता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लॉर्ड चैतन्य लाइक ए अनचेस्ड वाइफ ऑलवेज थिंक अबाउट एरमा व्हाइल डूइंग ऑल हाउस होल्ड वर्क्स। यू शुड ऑल्सो थिंक ऑफ कृष्णा व्हाइल बिजी इन योर वर्ल्डली एंटरटेनमेंट्स।
तो ये स्थिति वो है जब आप ऐसे वातावरण में हैं, जब आप ऐसे वातावरण में हैं कि जो है विरोधी हैं, भक्ति विरोधी हैं। तो कई बार जो है हम लोग ऐसे वातावरण में थे या वहाँ से आए, तो आप विरोध नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये विधि है। लेकिन जब हम ऐसे वातावरण में आ गए हैं जहाँ भक्तों का ही समाज है, तो फिर जो है वो व्यापारी की स्थिति है। व्यापारी अपना व्यापार करता है और उसके सब लोग जो है सहायक ही होते हैं। यहाँ सब व्यापारी हैं, व्यापारियों का समाज है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं छिपाने की। लेकिन जो है जो लोग अभी भी भौतिक संसार में हैं और कई प्रकार के उनके ऊपर जो है दबाव डाले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको छिपा करके रखना पड़ता है, चिंतन करना होता है। रघुनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा, लेकिन फिर आगे चल करके वो ज़्यादा समय तक ये चलता नहीं है, ज़्यादा समय तक चलता नहीं है। आखिर वो भागे भागे तो ज़्यादा समय तक जो है ये चलेगा नहीं, है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का चिंतन कर रहा है तो वो हमेशा ही चाहता है कि मैं छूटूं और ऐसे समाज में आऊं, तो उसको फिर भगवान देते हैं, उसको छुड़ाते हैं बंधन से। तो वो भी जो है कभी समय आता है ऐसा कि उसका प्रभाव फिर जो है दूसरों पर पड़ता है। शुरू में ही होता है कि आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं और सब लोग जो है आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम भक्ति करते हो तो हंसी उड़ाते हैं, तो आप जो है उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन समय बदलता है तो फिर आप या तो स्थान बदल देंगे, या उसी स्थान में अगर आप हैं तो आपका प्रभाव जो है उस स्थान पर रहेगा और उस स्थान के लोगों पर आपका प्रभाव रहेगा। कोई स्त्री है तो स्त्री भी जो है उसको दब करके रहना पड़ता है, उसके ऊपर दबाव रहता है। लेकिन आगे चल करके फिर जो है उसके जो पति हैं या उसके पिता हैं अनुकूल हो जाते हैं और उसका जो है उसकी सुरक्षा होती है, उसका प्रभाव जमता है। तो समय के अनुसार जो है स्थिति बदलती है। या तो आप स्थान छोड़ करके आ जाएं भक्तों के समाज में, और नहीं तो उसी स्थान में ही जो है भक्तों का समाज आ जाता है। इस तरह से होता है। ज़्यादा देर तक ये स्थिति चलती रही कि तनाव की स्थिति तो रहेगी।
तो जैसे कि आपने बताया कि अहंकार, हम अहंकार कार नहीं है, हम अहम व्यापार। उससे मुझे याद आया कि वास्तव में सही बात है कि गोपियों ने ऐसा ही कहा भगवान से कि हम तो शुरू में मतलब देखे जा रहे हैं कृष्ण के लिए। और दूसरा ये आपको श्लोक मिला, इसलिए मुझे बहुत ही आश्चर्य लग रहा क्योंकि कल श्री गोपाल गोस्वामी आविर्भाव तिरुभाव था और ज्यादातर लगता होते हैं तो दोनों एक साथ लग गए श्लोक भी हो आचार्य का आविर्भाव, परंतु एक घंटे में दोनों क्लास एक साथ हो भी नहीं सकते क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। और जैसा कि भगवान ने बताया इसमें कि वो मुझसे बंधे होते हैं, वास्तव में हम प्रभु जी के भी जीवन में देखते हैं कि वो बंधे हैं प्रेम से। कभी भी मंगल आरती हो या कुछ भी हो कार्यक्रम कभी भी नहीं छोड़ रहे। तो विशेष बात है कि भगवान की योजना में हमें सबसे सुनने के लिए मिल रहा है। और उस दिन भी संजय था तो मैंने कुछ बताया था सर, मुझे विशेष बात समझ नहीं प्रभु जी की कितनी तबियत खराब थी, तब भी वो मंगल आरती में आए, पर मंगल आरती में नहीं आए, उनको जितना भी कार्य था वो सब कर रहे हैं। यही व्यवहार कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, तो हमें वो भी अपना ही चाहिए जिससे कि कृष्ण प्रेम में आप हो।
व्यापार में अगर आप आ सकते हैं तो मंगल आरती के लिए बहुत अच्छा व्यापार है। जो व्यक्ति प्राण भगवान है गुरु वस्तम के कारण अनुच सिर में गाय है, तो इससे जो है धनुषेन्द्र ले गए, तो वो साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त करता है, सभी स्वर्ग के बाद भगवान दर्शन प्राप्त करता है। तो बहुत बढ़िया व्यापार है, मंगल आरती में अगर इसी प्रकार से अगर आते हैं तो ये जो है इससे बहुत तेजी से उन्नति होगी। हनुमान प्रभा।